नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।